पृष्ठ संख्या 30 अध्याय 2 इतिहास का क्षेत्र स्कोप ऑफ हिस्ट्री। आदिकाल से आधुनिक युग तक इतिहास क्षेत्र का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील रहा है। इसके विपरीत स्वरूप का एकमात्र आधार विभिन्न गुणों के विभिन्न युगों के सामाजिक मूल्य तथा उनकी सामाजिक आवश्यकताएं रही हैं। प्रारंभ में इतिहास चिंतन का उद्गम अतृप्त ज्ञान तृष्णा को तृप्त करने के उद्देश्य से हुआ था। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन इतिहासकारों ने इतिहास का अध्ययन किया। इतिहास के जनक हेरोडोटस ने अतीत के मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी प्रस्तुत की। रेनियर ने उचित ही कहा है कि प्रत्येक युग में समाज इतिहासकारों से कुछ प्रश्न करता है और इतिहास का नवीन साक्ष्यों के आलोक में अतीत से उनका उत्तर प्राप्त कर समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसलिए कॉलिंगवुड ने इतिहास को प्रश्नोत्तर माना है। सभी इतिहासकारों ने प्रत्येक युग में इतिहास लेखन की आवश्यकता को स्वीकार किया है। उनका एकमात्र तात्पर्य सामाजिक मूल्यों तथा आवश्यकता के अनुसार इतिहास का प्रस्तुतिकरण था। हेरोडोटस ने महाकाव्य युग में इतिहास की सामाजिक आवश्यकता को कहानी मात्र समझा था। वैज्ञानिक युग की सामाजिक आवश्यकता ने व्यूरी को इतिहास विज्ञान है न कम और न अधिक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया। मध्य युग में जब धर्म की प्रधानता स्वीकार की गई, सेंट ऑगस्टाइन ने संपूर्ण विश्व को ईश्वर का नगर सिटी ऑफ गॉड कहा। मानव समाज में विकास की प्रक्रिया निरंतर रही है। इस विकास प्रक्रिया के साथ साथ सामाजिक आवश्यकताएं भी विकसित होती रही हैं। समाज से संबंधित इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इतिहासकारों ने दिया है। आदिकाल से मानवीय प्रक्रिया का स्वरूप संघर्षमय रहा है। यह उत्थान विकास तथा पतन की वक्र रेखीय गति की ही इतिहास गति मानी गई है। इतिहासक क्षेत्र के अंतर्गत जब इतिहासकार किसी घटना का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है तो उसके समक्ष तीन प्रश्न प्रमुख होते हैं। घटना क्या है, वह कैसे घटी तथा क्यों घटी। इतिहासकार इसी का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इतिहासकार के दो प्रमुख कार्य हैं। प्रश्न संख्या 31, तथ्यों का संकलन तथा उनका विश्लेषण। एक का स्वरूप विषयनिष्ठ और मानवतावादी है तथा दूसरे का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ है। ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहासकार अपने इतिहास के प्रस्तुतिकरण में तीन प्रमुख उपादानों का प्रयोग करता है, वैज्ञानिक, परिकल्पनात्मक तथा साहित्यिक। यद्यपि मानवीय कार्यों तथा उपलब्धियों पर प्रकृति का अध्ययन इतिहासकार के क्षेत्र से बाहर है, इतिहासक क्षेत्र के अंतर्गत मनुष्य के एक साधारण कार्य से लेकर उसकी विविध उपलब्धियों का वर्णन होता है। यद्यपि प्रकृति का अध्ययन इतिहासक क्षेत्र से बाहर है, फिर भी इतिहास में प्रकृति की पूर्ण उपेक्षा संभव नहीं है। जब कॉलिंगवुड ने इतिहास को विचार का इतिहास स्वीकार किया तो प्रोफेसर वॉल्स ने सबसे पहले इसका विरोध किया। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के कार्य तथा उपलब्धियों पर प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। भूकंप, बाढ़, अकाल, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि प्रायः मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों को नियंत्रित करती हैं। पर्वत, नदी, झील तथा मनुष्य तथा समुद्र ने मानवीय समाज के भाग्य को निर्धारित किया है। मध्य एशिया की पठारी तथा अन उपजाऊ बंजर भूमि ने मंगोलों को लुटेरा तथा लड़ाकू बना दिया। यूनान के द्वीप समूहों ने उनके हृदय में उपनिवेश स्थापना की प्रवृत्ति को जन्म दिया। भारतवर्ष में सिंधु, गंगा, यमुना तथा हिमालय की भूमिका इतिहास में महत्वपूर्ण रही है। वाटरलू, प्लासी तथा पानीपत का महत्व नहीं होता। यदि नेपोलियन, क्लाइव तथा बाबर से इन स्थानों का संबंध नहीं होता, कावेरी नदी का महत्व कर्नाटक के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति तथा भौगोलिक परिस्थितियों के परिवेश में ही मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों का अध्ययन ऐतिहासिक क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए। इस प्रकार ऐतिहासिक क्षेत्र का स्वरूप सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सदैव विकसित होता रहता है। इतिहास लेखन के जनक हेरोडोटस से 20वीं सदी के महान इतिहासकार टायनबी तक यदि इतिहास लेखन की विवेचना की जाए तो इसके निरंतर परिवर्तित स्वरूप का अनुमान हो सकता है। जैसे प्रत्येक कवि अपने युग का कवि होता है, उसी प्रकार प्रत्येक इतिहासकार अपने युग का इतिहासकार होता है। कवि वाणी की भांति इतिहासकार की वाणी युग की वाणी होती है। अतीतकालिक समाज का पूर्ण चित्रण ही इतिहास का प्रमुख उद्देश्य होता है। किसी भी समाज के से संबंधित भौगोलिक दशा, वातावरण, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, संवैधानिक, कानून, न्याय व्यवस्था, पृष्ठ संख्या 32, सुरक्षा व्यवस्था आदि का विवरण आवश्यक हो जाता है। समाज से संबंधित सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इतिहासकार से अपेक्षा की जाती है कि इन सभी विषयों का उचित विवरण समाज के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि समाज का क्षेत्र विस्तृत है तो इतिहासकार के लिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है। इसलिए आधुनिक इतिहासकारों ने इतिहास क्षेत्र का वर्गीकरण किया है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। वह अपने ज्ञान से संबंधित सामाजिक, आर्थिक आदि विषय का उत्तर देता है। इतिहास क्षेत्र का यह वर्गीकरण वैज्ञानिक युग का देन है। ऐतिहासिक गवेषणा की आधुनिक विधियों ने इतिहास के सामान्य ज्ञान की अपेक्षा विशिष्ट ज्ञान की उपादेयता को सिद्ध किया है। परिणामस्वरूप इतिहास का विभाजन केवल प्राचीन, मध्ययुगीन तथा आधुनिक काल में किया गया है, बल्कि इसके अंतर्गत अनेक छोटी सी छोटी शाखाओं पर शोध करके इतिहासकारों ने विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त किया है। इस प्रकार इतिहास का क्षेत्र निरंतर विकसित होता रहा जा रहा है। देवी के अनुसार इतिहास का वर्गीकरण उपयोगी तथा स्वाभाविक है। इसका एकमात्र उद्देश्य विशेष तथा परिवर्तित घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करना है। FCS शीलर ने भी इतिहासक क्षेत्र के वर्गीकरण के संबंध में कहा है कि विस्तृत वर्गीकरण दुर्लभ है, फिर भी इतिहासकारों ने अतीतकालिक घटनाओं के आधार पर सामाजिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इतिहास क्षेत्र का वर्गीकरण किया है। राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक संस्थाएं समाज की रंगमंच है, जहां महापुरुष अपने कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। समाज के जीवन में इसका अधिक महत्व है। A.L. राउज ने इसे इतिहास की रीढ़ माना है। जन साधारण की इस संस्था में युग पुरुष तत्कालीन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। सम्राट अशोक, अकबर महान, महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के कार्यों एवं उपलब्धियों का प्रदर्शन राजनीतिक रंगमंच पर ही हुआ है। इन जननायकों ने अपने कार्यों के परिवेश में तत्कालीन समाज के भाग्य का निर्माण किया है। इसमें प्रायः युद्ध, संधियां तथा क्रांति के नेतृत्व का विवरण मिलता है, परंतु ये घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इनमें तत्कालीन मानवीय समाज की इच्छा निहित रहती है तथा मानवीय कार्यों पर इसका व्यापक प्रभाव देखा गया है। अतीत संबंधी महापुरुषों के कार्यों, उपलब्धियों, सफलता तथा असफलता से युग पुरुष शिक्षा प्राप्त कर राजनैतिक रंगमंच पर महापुरुषों की जीवनी, कार्य तथा उपलब्धियां वर्तमान को प्रकाशित करती हैं तथा भविष्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। लेकिन लेनिन की जीवनी रूसी राज्य क्रांति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार पृष्ठ संख्या 33 इंग्लैंड के 17वीं सदी के गृह युद्ध तथा क्रांति के अध्ययन के लिए क्रॉमवेल की जीवनी का अध्ययन अत्यंत उपयोगी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक तथा गोपाल कृष्ण गोखले की जीवन गाथा के अभाव में अधूरा होगा। इन महापुरुषों ने राजनीति के रंगमंच पर ही अपने कार्यों को प्रदर्शित किया है। थ्यूसीडीडीज, गिबन तथा मैकाले की महत्वपूर्ण रचनाओं का आधार राजनीतिक इतिहास ही रहा है। प्रारंभिक इतिहासकारों ने राजनीतिक इतिहास को ही महत्वपूर्ण समझकर इतिहास लेखन किया है, क्योंकि इसका विवरण तत्कालीन सामाजिक आवश्यकता थी। यह इतिहास की एक महत्वपूर्ण शाखा है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इतिहासकारों ने अनुभव किया कि महापुरुषों की जीवनी के साथ सर्वसाधारण मानव समाज के योगदान का अध्ययन भी आवश्यक है, क्योंकि जनसाधारण ही महापुरुषों की शक्ति होता है। उनके सहयोग से ही महान विभूतियों ने सफलता प्राप्त की, अतः राजनीतिक इतिहास में उनके कार्यों का अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है। एक चीनी कहावत है कि किसी युग के महापुरुष समाज के लिए कलंक तथा दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। उनकी कृतियों तथा उपलब्धियों में जन सामान्य का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नेपोलियन के शासन काल में जन सामान्य ने खून बहाया और अपना बलिदान दिया, परंतु ख्याति उन्हें न मिलकर नेपोलियन को प्राप्त हुई। मिस्र के पिरामिडों से लेकर अमेरिका की अंतरिक्ष उपलब्धियों तक राष्ट्र को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने में सर्वसाधारण का योगदान है। भारतवर्ष की स्वतंत्रता केवल जननायकों के प्रयास का ही परिणाम रही है, बल्कि असंख्य भारतवासियों ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में अपने बलिदान त्याग से योगदान किया है। किसी महापुरुष के उत्थान तथा क्रूर और निर्दयी शासक के प्रतिरोध के पीछे जनसाधारण वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि वर्तमान युग में ऐतिहासिक शोध का विषय दरबारी जीवन तथा शासक का जीवन न होकर ग्रामीण अंचलों से संबद्ध सर्वसाधारण की जीवनी तथा उनका कार्य महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता जा रहा है। अब समय आ गया है कि राजनीतिक इतिहास में जन सामान्य की भूमिका का अध्ययन किया जाए। आधुनिक युग में इसको सूक्ष्म इतिहास माइक्रो हिस्ट्री की संज्ञा दी गई है। संवैधानिक इतिहास जीएन क्लार्क के अनुसार संस्थाओं का इतिहास अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इसका राजनीतिक इतिहास से गहरा संबंध है। इसके अध्ययन का स्वरूप वस्तुनिष्ठ है, जबकि राजनीतिक इतिहास विषयनिष्ठ होता है। सामाजिक जीवन में इसका स्थान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सामाजिक जीवन का आधार है। आज 20वीं सदी में कुछ इतिहासकारों ने संवैधानिक इतिहास तथा प्रशासकीय पृष्ठ संख्या 34 इतिहास में अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हेलम, कार्निवाल, लेविस, अर्सकीन तथा मेटलैंड ने संवैधानिक इतिहास लिखकर इतिहासक क्षेत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन विद्वानों ने इसके अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की, क्योंकि इसने जन सामान्य को प्रभावित किया है। मनुस्मृति, हमुराबी का कोड, जास्टिनियन कोड, कोड ऑफ नेपोलियन, मैकाले के इंडियन पेनल कोड का प्रभाव जन सामान्य पर पड़ा है। ब्लैकस्टोन कृत कमेंट्रीज ऑफ लॉ ऑफ इंग्लैंड तथा पीबी काणे का धर्मशास्त्र का इतिहास इस वर्ग की महान उपलब्धियां हैं। आर्थिक इतिहास आर्थिक इतिहास को महत्वपूर्ण बनाने में केंदोरसे, कोमते, बर्कले तथा कार्ल मार्क्स का सर्वाधिक योगदान रहा है। कार्ल मार्क्स द्वारा इतिहास की आर्थिक व्याख्या ने अनेक इतिहासकारों को इस विषय में सोचने के लिए बाध्य कर दिया। समाज के प्रारंभ के साथ ही आर्थिक इतिहास का उदय होता है। समाज ने अपनी आजीविका के साधनों को किस प्रकार उत्पन्न किया, इसका ज्ञान आर्थिक इतिहास प्रदान करता है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के पश्चात इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। ऑरेस टानी तथा एलिन पावर ने सबसे पहले आर्थिक इतिहास लिखा है। जीएन क्लार्क के अनुसार आधुनिक युग में आर्थिक इतिहास ने इतिहास क्षेत्र के अंतर्गत एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। आर्थिक इतिहास के माध्यम से वर्तमान समाज इतिहासकारों से आर्थिक प्रश्न पूछता है। सर विलियम एस्ले के अनुसार विचार स्वमेव ऐतिहासिक तथ्य होते हैं। एनएसबी ग्रास के अनुसार आर्थिक इतिहास का तात्पर्य मानवीय आजीविका के साधनों से है। आजीविका के साधनों के उत्पादन में मनुष्य किस प्रकार प्रयास करके अधिकतम संतोष प्राप्त करता है, वे आर्थिक इतिहास के प्रमुख तत्व होते हैं। आर्थिक इतिहास के क्षेत्र में मनुष्य के कार्यों को प्रभावित करने वाले विचार, समाज का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक वर्गों का पारस्परिक संबंध तथा व्यवहार का अध्ययन आदि विषय होते हैं। इतिहासकारों का प्रयास यह देखना है कि आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप किस प्रकार सामाजिक संबंधों तथा मानवीय व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि इतिहासकार का अध्ययन मानवीय व्यवहार तथा कार्यों के परिवेश में सामाजिक परिवर्तन है। यह इतिहास की आर्थिक कहानी है। ए एल राउज ने लिखा है कि इतिहास की रोचकता को सजीव रखने के लिए इस विषय को ग्राफ, रेखांकित चित्रों तथा मानचित्र से युक्त नहीं करना चाहिए। सर विलियम एस्ले ने आर्थिक इतिहास के स्वरूप के संबंध में लिखा है, मनुष्य ने आजीविका के साधनों के उत्पादन में अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए क्या किया, यही आर्थिक इतिहास है। मनुष्य के रूप में वह आदिकाल से एकाकी अथवा व्यक्तिवादी नहीं रहा है। किसी न किसी रूप में संगठित तथा सामूहिकता के तथ्य उसकी गतिविधियों से संचालित हैं। जी एन क्लार्क के अनुसार तकनीकी यंत्र तथा कारखानों द्वारा उत्पादित पदार्थों से यह स्पष्ट हो जाता है। पदार्थ का अंतिम स्वरूप सामूहिकता तथा संगठन का परिणाम होता है। श्रम अभियंताओं, भूगर्भ शास्त्रियों तथा पूंजीपतियों के सहयोग से किसी वस्तु का उत्पादन संभव है। वस्त्र उत्पादन में किसान, कोयला, मशीन, श्रम तथा पूंजीपति के पारस्परिक सहयोग की अपेक्षा होती है। इतिहासकार का कर्तव्य है कि इन सभी पक्षों पर विचार करें। आजकल व्यावसायिक इतिहास का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। पूंजीपतियों के विकास का भी इतिहास होता है। टाटा, बिरला, अंबानी तथा डालमिया परिवारों का विकास आर्थिक इतिहास का रोचक विषय हो सकता है। बैंकों का अध्ययन इतिहास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सर जॉन क्लैफम ने बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा ईटी मैकडरमॉट ने वेस्टर्न रेलवे का इतिहास लिखा है। मिस सदरलैंड ने 18वीं सदी का व्यापारी तथा रिचर्ड पेरीज ने वेस्ट इंडिया फॉर्च्यून लिखकर आर्थिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आर्थिक इतिहास के अंतर्गत आजीविका के साधन, कृषि, यातायात के साधन, उद्योग, व्यापार आदि विषयों का अध्ययन होता है। डार्विन ने आर्थिक इतिहास को अस्तित्व के लिए संघर्ष तथा कार्ल मार्क्स ने आर्थिक नीतिवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन करके विषय को रोचक एवं आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। 1917 की रूस की राज्य क्रांति के बाद आर्थिक इतिहास का महत्व द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है। मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित अनेक भारतीय विद्वानों ने आर्थिक इतिहास की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया है। हिरेन मुखर्जी, रजनी पामदत्त, कोसाम्बी तथा इरफान हबीब ने आर्थिक इतिहास लेखन को एक नवीन दिशा प्रदान की है। आधुनिक आर्थिक सिद्धांत का आधार गणित तथा सांख्यिकी है, परंतु इतिहास में इन सिद्धांतों का प्रयोग इतिहास को अरुचिकर बना देगा। इतिहास को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उनका कम से कम उपयोग आवश्यक है। गणित तथा सांख्यिकी का अधिक प्रयोग इतिहासकार को कैची तथा गोद शैली सीजर एंड पेस्ट के लिए विवश कर देगा। संभावना है कि इतिहास अपना अस्तित्व खो बैठेगा। वैज्ञानिक इतिहासकारों ने भी प्रतिरोध की आवश्यकता की अनुभूति की है। आर्थिक इतिहास साक्ष्यों के आधार पर उपयोगी तथा बोधगम्य होना चाहिए। इतिहासकारों से यही अपेक्षा की जाती है। पृष्ठ संख्या 36, सामाजिक इतिहास। कोमते के अनुसार इतिहास सामाजिक भौतिक शास्त्र है। इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार के सामान्य नियमों का अध्ययन किया जाता है। टायनबी ने लिखा है कि इतिहास का निर्माण सामाजिक अणुतत्वों से हुआ है। इतिहास का विकास व्यक्तियों तथा राष्ट्रों से नहीं बल्कि विभिन्न युगीन समाजों से हुआ है। अतः इतिहास की आधारशिला समाज है। सामाजिक इतिहास को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने का एकमात्र श्रेय ट्रेवेलियन को है। उनके सामाजिक इतिहास का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक इतिहास की परिभाषा में ट्रेवेलियन का विचार अधिक ग्राह्य है। अतीत में मनुष्यों का दैनिक जीवन, विभिन्न वर्गों का पारस्परिक आर्थिक संबंध, परिवार का स्वरूप, गृहस्थ जीवन, श्रमिकों की दशा, मानवीय दृष्टिकोण, सांस्कृतिक जीवन तथा सामान्य परिस्थितियों से उत्पन्न धर्म, साहित्य, संगीत, वास्तुकला, शिक्षा तथा साहित्य है। रेनियर के अनुसार सामाजिक इतिहास आर्थिक इतिहास की पृष्ठभूमि तथा राजनीतिक इतिहास की कसौटी है। ट्रेवेलियन की दृष्टि में सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास मरुस्थल तथा राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय है। 20वीं सदी के अधिकांश इतिहासकारों का ध्यान सामाजिक इतिहास के ने आकृष्ट किया है। सामाजिक समस्याओं के प्रति चेतना ने इतिहास के क्षेत्र में क्रांतिकारी रुचि पैदा कर दी है। समाजशास्त्र का विकास सामाजिक इतिहास के परिवेश में हुआ है। सामाजिक विकास तथा परिवर्तन की गतियों का अध्ययन समाजशास्त्र के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। सामाजिक इतिहास की अपनी समस्याएं हैं। इसका अध्ययन रोचक है, परंतु इसकी निरंतरता, मंदगति तथा परिवर्तन का अध्ययन अत्यंत जटिल है। राजनीतिक परिवर्तन जीवन के सतह पर दृष्टिगोचर है। सामाजिक परिवर्तन भूमिगत अगोचर जलस्रोत के समान है। सामाजिक परिवर्तन का ही परिणाम राजनीतिक परिवर्तन होता है। एक नवीन सम्राट, प्रधानमंत्री, नवीन सांसद राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं, परंतु सामाजिक जीवन में इस परिवर्तन का प्रभाव प्रायः नगण्य होता है। भारतीय इतिहास में राजनीतिक उथल पुथल के कारण अनेक राजवंशों का उत्थान तथा पतन हुआ है। राजपूतों के पतन के बाद तुर्की सुल्तानों, मुगलों तथा अंग्रेजों का शासन हुआ, परंतु इन परिवर्तनों ने सामाजिक जीवन को प्रायः नहीं प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज का मूल स्वरूप आज भी वही है जैसा गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी के समय में था। भक्ति आंदोलन के समाज सुधारक रामानंद, कबीर, नानक तथा चैतन्य ने समाज सुधार के लिए अथक प्रयास किया। राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने भी समाज सुधार का प्रयास किया। संसद तथा विधानसभाओं ने अनेक निगम पारित किए। इतने प्रयास के बावजूद सामाजिक स्वरूपों में किसी प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ। यदि सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार भी किया जाए तो भूमिगत जल स्रोत की भांति इसकी गति इतनी मंद और अगोचर रही है कि इसका सूक्ष्म निरूपण कठिन प्रतीत होता है। समाजशास्त्रियों ने इस परिवर्तन की गति का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। सामाजिक इतिहास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। राजनैतिक इतिहास 19वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार ने राजनैतिक इतिहास लेखन की आवश्यकता की अनुभूति की। इसमें राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का वर्णन रहता है। इसमें समस्या संबंधी आंतरिक तथा बाह्य परिस्थितियों का उल्लेख नहीं रहता। इसके अंतर्गत समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न राष्ट्रों के प्रयास तथा आदान प्रदान के पत्रों का विवरण रहता है। इस प्रकार का इतिहास कई दृष्टि से दोषपूर्ण रहता है। राजनैतिक इतिहास का अध्ययन विश्वविद्यालयी स्तर के छात्रों को आलोचनात्मक विधि से करना चाहिए। सांस्कृतिक इतिहास सामाजिक इतिहास का अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत रीति रिवाज, संस्कार, शिक्षा, साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत तथा आमोद प्रमोद के साधनों का विवरण रहता है। सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन को सरल तथा सुबोध बनाने के लिए इतिहासकारों ने इतिहास क्षेत्र को प्राचीन, मध्ययुगीन तथा आधुनिक काल में विभक्त किया है। किसी महान सम्राट के शासन काल को सांस्कृतिक इतिहास का विषय बनाया जाता है। वैदिक कालीन, मौर्य कालीन, गुप्त कालीन, हर्ष कालीन, अकबर कालीन सांस्कृतिक विकास का अध्ययन इतिहासकारों ने किया है। धार्मिक इतिहास। इतिहास का यह एक अत्यंत रोचक विषय है। अधिकांश इतिहासकारों ने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर इस विषय पर अधिकाधिक चर्चा की है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म का इतिहास विभिन्न युगों में लिखा गया है। यूरोप में पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार काल धार्मिक इतिहास लेखन की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। धार्मिक विषयों की चर्चा प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक इतिहासकारों ने की है। औपनिवेशिक इतिहास। औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रों ने कच्चे माल की प्राप्ति के लिए एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए। प्रारंभ में स्पेन, पुर्तगाल तथा बाद में इंग्लैंड, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच उपनिवेश विस्तार के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। इन राष्ट्रों के बीच पारस्परिक प्रतिद्वंदिता के परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्थिति तनावपूर्ण हो गई। फसोडा संकट, मोरक्को संकट तथा आगादीर संकट ने कई बार विश्व युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। इन समस्याओं ने इतिहासकारों का ध्यान आकृष्ट किया। परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। इस इतिहास ने इतिहासक क्षेत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। संसदीय इतिहास। लंदन विश्वविद्यालय के शोध प्रोफेसर डॉक्टर एजे टायनबी ने उन इतिहासकारों की कटु आलोचना की है जिन लोगों ने राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर राज्य प्रभुसत्ता के सिद्धांतों का समर्थन किया है। फासीवाद तथा साम्यवाद के प्रतिरोध में अनेक इतिहासकारों ने संसदीय व्यवस्था की उपादेयता को सिद्ध करने के लिए संसदीय इतिहास लिखना प्रारंभ किया। उन लोगों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राजा, अभिजात वर्ग, राजा तथा संसद के बीच संघर्ष पर विशेष प्रकाश डाला है। यही नहीं बल्कि उन लोगों ने विश्वव्यापी मानवीय समाज के कल्याण के लिए संसदीय व्यवस्था की उपादेयता को सिद्ध किया है। सैनिक इतिहास। अनेक राज्यों के उत्थान तथा पतन के पीछे सैनिक कारण निर्णायक रहे हैं। नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी का उत्थान तथा पतन सैनिक गतिविधियों के कारण हुआ। इसके अंतर्गत वायु सेना, स्थल सेना, जल सेना के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण और इसके प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। आजकल अणु बम, न्यूक्लियर अस्त्र, क्षेप्यास्त्र तथा रासायनिक अस्त्रों का निर्माण मानव जाति के विनाश के लिए किया जा रहा है। रेनियर के अनुसार आधुनिक इतिहासकारों का पुनीत कर्तव्य है कि नैतिकता के माध्यम से इन नवीन अस्त्रों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाए। मानवता के विरुद्ध परमाणु अस्त्रों के प्रयोग की सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए। नागासाकी, हिरोशिमा तथा वियतनाम में अमेरिका द्वारा परमाणु अस्त्रों का प्रयोग मानव समाज के लिए कलंक है। सन 1939 के प्रारंभ में सर डेनिशन रास ने कहा था कि वे दूसरे विश्व युद्ध के लिए अग्रसर हो रहे हैं। वे कोटि कोटि नवयुवकों से बलिदान मांग रहे हैं और वे उनके आदेश को स्वीकार भी करेंगे। सर डेनिशन रास की दृष्टि में भावी पीढ़ी के लिए इन नवयुवकों के बलिदान का कोई औचित्य नहीं है। कॉमनवेल्थ का इतिहास। इतिहास क्षेत्र में कॉमनवेल्थ का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। डॉक्टर जे ए विलियमसन ने ब्रिटिश साम्राज्य का विकास, समुद्री व्यापार तथा ट्यूडर कालीन नाविक आदि रचनाएं की हैं। कॉमनवेल्थ इतिहास का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशों की स्वतंत्रता के बाद उन्हें राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्रों में बांधने के लिए कॉमनवेल्थ की स्थापना की गई। पृष्ठ संख्या 39। आज भी इसके माध्यम से ब्रिटेन तथा स्वतंत्र राष्ट्रों का संबंध बना हुआ है। सर कीथ हैंकॉक ने सर्वे ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ अफेयर्स, सर्वे ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ अफेयर्स नामक पुस्तक लिखी है। विचारों का इतिहास। इतिहास क्षेत्र के विचारों का स्वतंत्र अस्तित्व है। देवी के अनुसार विचार का संबंध शरीर तथा आत्मा से है। यही कार्यों का प्रेरणा स्रोत होता है। कॉलिंगवुड ने समस्त इतिहास को विचार का इतिहास स्वीकार किया है क्योंकि मानवीय कार्यों का यही उद्गम स्थल है और मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित तथा बाध्य करता है। परिणाम स्वरूप समस्त इतिहास विचार प्रधान होता है। ऐतिहासिक ज्ञान अतीत में मानवीय मस्तिष्क का ज्ञान है। यह मानवीय अनुभव का क्रमबद्ध ज्ञान है। यह ज्ञान का स्रोत तथा बुद्धि का फल है। अतीत संबंधी ज्ञान ही इतिहासकार के मस्तिष्क में पुनरावृत्ति होती है। इसी को कॉलिंगवुड ने मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रिया कहा है। इतिहास दर्शन। इतिहास दर्शन का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वाल्टेयर थे। उनका एकमात्र उद्देश्य इतिहास अध्ययन को आलोचनात्मक तथा वैज्ञानिक बनाना था। इतिहासकार से अपेक्षा की जाती थी कि ऐतिहासिक तथ्यों की पुनरावृत्ति की अपेक्षा अपने मस्तिष्क को विकसित करें। दर्शन का अर्थ ज्ञान के प्रति प्रेम है। इसका संकेत क्रमबद्ध ज्ञान से है, जिसका निरीक्षण अथवा प्रत्यक्षीकरण वैज्ञानिक विधियों से भी संभव नहीं है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जब हीगेल ने इतिहास दर्शन का प्रयोग किया तो उसका तात्पर्य सार्वभौमिक मानवीय इतिहास से था। 19वीं सदी के अंत में दार्शनिक इतिहासकारों ने घटना विशेष के ज्ञान के लिए सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया। इन दार्शनिक इतिहासकारों की दृष्टि में इतिहास के माध्यम से मानवीय समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है और यह उनके समाधान के लिए मार्गदर्शन करता है। यदि विज्ञान बाह्य ज्ञान का अध्ययन है तो दर्शन अंतर ज्ञान का अध्ययन है। इतिहास दर्शन के जन्मदाता वाल्टेयर का उद्देश्य इतिहास का आलोचनात्मक तथा वैज्ञानिक अध्ययन है। हीगेल का उद्देश्य सार्वभौमिक इतिहास से है। कोम्ते ने मानवीय ज्ञान संबंधी सामान्य नियमों के अन्वेषण के लिए किया। कॉलिंगवुड ने अतीत की घटना तथा इतिहासकार के मस्तिष्क में पारस्परिक संबंध की विवेचना को इतिहास दर्शन का प्रमुख उद्देश्य माना है। वाटरफील्ड के अनुसार इतिहास का एक निरंतर अग्रसारित होने वाली शक्ति है। ब्यूरी, ब्लैक बेबर तथा बियर्ड की दृष्टि में ऐतिहासिक दर्शन युग के अनुकूल साम्य स्थापना का एक प्रयास है। मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद के रूप में तथा तैनबी युगीन समाजों के विश्लेषण में ऐतिहासिक दर्शन को प्रतिरूपित किया है। क्रोचे के अनुसार इतिहास दर्शन एक बौद्धिक संस्था है। पृष्ठ संख्या 40। इतिहास दर्शन के दो रूप हैं, आलोचनात्मक इतिहास दर्शन तथा परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन। आलोचनात्मक इतिहास दर्शन विश्लेषणात्मक है, परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन औपचारिक तथा अर्थवादी है। पहले का उद्देश्य इतिहास विज्ञान हिस्टोरियोग्राफी का विश्लेषण तथा तार्किक खोज है। दूसरे इतिहास दर्शन का उद्देश्य इतिहास की घटनाओं में विशेष महत्वपूर्ण अर्थ का अन्वेषण होता है। मानव स्वतंत्रता तथा मानव प्रगति का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक यदि इतिहास का सर्वेक्षण किया जाए तो इसका स्वरूप मानवीय स्वतंत्रता के निरंतर प्रयास में परिलक्षित होता है। लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि इतिहास मानवीय स्वतंत्रताओं की विकसित कहानी है। इतिहास के महान आंदोलन का उद्देश्य साम्राज्यों का निर्माण नहीं अपितु मानवीय इच्छा की स्वतंत्रता का निरंतर प्रयास रहा है। उद्देश्य परक इतिहास में मनुष्य ने अपनी शक्ति का उपयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया है। स्वतंत्रता के अभाव में मानवीय शक्ति को विकसित होने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। गिबन ने रोमन साम्राज्य के पतन का विश्लेषण करते हुए मानवीय स्वतंत्रता के अभाव को पतन का प्रमुख कारण बताया है। फ्रांस के इतिहास में 1779, 1830, 1848 की राज्य क्रांतियों के नवीन अध्यायों की प्रमुख उद्घोषणा में स्वतंत्रता का व्यापक प्रभाव देखा गया है। स्वतंत्र मानवीय इच्छा ने मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रिया को सक्रिय बनाया है, जबकि अनिवार्यता ने मानवीय शक्ति पर प्रतिबंध लगाया। बौद्धिकता का विकास स्वतंत्रता का परिचायक है। क्रिया शक्ति चेतना ने ऐतिहासिक घटनाओं को सर्वाधिक प्रभावित किया है, अतः संपूर्ण इतिहास मानवीय इच्छा की स्वतंत्रता से ओतप्रोत है। इसलिए दार्शनिक इतिहासकारों ने इतिहास को मानवीय स्वतंत्रता का इतिहास कहा है। तुर्को तथा कोंदोर्सो ने मानव प्रगति के इतिहास से ही इतिहास का प्रारंभ माना है। इस तत्व ने इतिहास को एकता तथा साम्यता प्रदान की है। प्रगति की अवधारणा ने अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के बीच निरंतरता को स्थापित किया है। इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यह सिद्धांत प्रगति की अवधारणा को गति प्रदान करता है। अतीतकालीन दास प्रथा से आधुनिक सभ्यताओं का सर्वेक्षण इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि यदि अवस्था से आधुनिक काल तक मानवीय इतिहास का स्वरूप प्रगतिवादी रहा है, इतिहास मानवीय प्रगति को मापने का एक यंत्र है। मनुष्य की क्रियाशील गतिविधियों ने किस प्रकार प्रकृति, पशु, पक्षी, पृथ्वी को शक्तियों पर विजय प्राप्त कर अंतरिक्ष यात्रा के माध्यम से चंद्रमा के धरातल पर अवतरण में सहायक सिद्ध हुआ है। मानवीय प्रगति ने ब्यूरी जैसे इतिहासकार को यह कहने के लिए बाध्य कर दिया है कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। अंत में हम कह सकते हैं कि समस्त मानवीय इतिहास प्रगति का इतिहास है। कॉलिंगवुड के अनुसार प्रगति का संबंध प्रकृति तथा इतिहास से है। प्रकृति की प्रगति नहीं अपितु विकास होता है, परंतु मानवीय इतिहास का स्वरूप प्रगतिशील रहा है। इतिहास में समस्त मानवीय उपलब्धियों के पीछे एक प्रगति का इतिहास होता है। चंद्रमा पर मानव अवतरण एक प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके पहले भी मनुष्य ने कई बार प्रयास किया था। इतिहासवाद के सिद्धांत के आधार पर अंतिम उपलब्धि के परिवेश में सभी प्रयासों का क्रमबद्ध अध्ययन करना है। आज जब हम जीवन संबंधी नवीन तथ्यों को स्वीकार करते हैं, तो उपादेयता को इतिहास के पृष्ठों में ढूंढते हैं। विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रथम विश्व युद्ध उग्र राष्ट्रीयता की भावनाओं का परिणाम था। मानव समाज की रक्षा के लिए विश्व संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव की गई। हेग न्यायालय, राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की उद्देश्य से की गई। विश्व भ्रातृत्ववाद की भावना को जागृत करने में इतिहासकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सबसे पहले सर वाल्टर रेले ने विश्व इतिहास लिखा। इस दिशा में एसजी विल्स तथा टैनबी का योगदान अधिक महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप आज राष्ट्र विशेष की समस्या विश्व समस्या के रूप में देखी जाती है। निष्कर्ष, इन विभाजनों का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। इतिहास का कालिक विभाजन यद्यपि महत्वपूर्ण है, परंतु इतिहासकारों को विशिष्ट दक्षता के परिवेश में अपने को बंदी नहीं बनाना चाहिए। प्रोफेसर बुशमेकर ने लिखा है कि अ फुलिस एग्जाजरेट स्पेशलिज अफुलिस एग्जाजरेटेड स्पेशलिएशन ब्रॉट अबाउट बाय टेरर ऑफ अपियरिंग अनसाइंटिफिक एंड डिलेटेंट। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक भाषण में एक जर्मन इतिहासकार ने कहा है कि मैं जर्मनी के इतिहास 1927 से 30 ईस्वी का विशेषज्ञ हूँ, तो श्रोताओं ने इसका उपहास किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में विशेषता के साथ साथ इतिहास के सामान्य ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। रेनियन ने स्पष्ट लिखा है कि किसी भी क्षेत्र की ऐतिहासिक दक्षता इतिहास का शत्रु है। यदि पेशेवर इतिहासकार सामान्य तथा सार्वभौमिक इतिहास नहीं लिखेंगे, तो इतिहास लेखन इतिहासकारों के हाथों से निकल जाएगा। परिणाम स्वरूप इतिहास की विशिष्ट दक्षता के साथ साथ सामान्य इतिहास का अध्ययन तथा लेखन करना चाहिए। वर्तमान समाज इतिहासकारों से यही अपेक्षा करता है।